आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर रोक के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रखा जारी, कहा किसी को नहीं कर सकते मजबूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में दिया जाएगा वेटेज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए संशोधित परिणाम किया जारी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, उनके परिजनों को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर रोक के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। इस मामले पर कल सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वे 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर आवश्यक हो तो दुकानदार कांवड़ मार्ग पर उपलब्ध भोजन के प्रकारों के बारे में बता सकते हैं कि वे किस तरह का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी। अब इस मामले में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि ये निर्देश कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांवड़ तीर्थयात्रियों के हस्तक्षेप को भी खारिज कर दिया। प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। मुरादाबाद में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को लेकर कल से 80 घंटे के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। अमरोहा में भी कल शाम से नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया। कांवड़ियों की भीड़ अधिक रही तो नेशनल हाईवे को रविवार की शाम से सोमवार की सुबह तक जीरो ट्रैफिक मोड पर रखने का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेन्ड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे।
आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री है उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के लिए संशोधित फाइनल स्कोर कार्ड जारी कर दिया। जो उम्मीदवार नीट के लिए उपस्थित हुए थे वे अपने परिणाम और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट questions.nta.ac.in और neet.ntaonline.in पर देख सकते हैं। परीक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि 17 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक प्राप्त की है। 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान जिन 1563 उम्मीदवारों को समय का नुकसान हुआ था उनके लिए 23 जून को फिर से परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कल सुल्तानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि वे निर्दोष हैं और उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जज शुभम वर्मा की अदालत में करीब 16 मिनट तक रहे और अपना बयान दर्ज कराया। जज वर्मा ने वादी अधिवक्ता से गवाह पेश करने के लिए कहते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या नकल करते हुए पकड़े जाने पर 1 करोड़ रूपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पिछले 28 जून को आयोजित स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष महिला मुख्य परीक्षा को आधार बनाते हुए आयोग ने यह चेतावनी जारी कर दी है। जारी आदेश में आयोग के उपसचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा है कि अध्यादेश के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरोपण करना और इसके लिए षड्यंत्र करना अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास दोनों ही सजा हो सकती है। देशभर में कल राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ करगिल विजय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल मद्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा।
अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठी राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया।
करगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रजत जयंती समारोह में सम्मिलित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि करगिल का युद्ध पाकिस्तान ने गलत तरीके से भारत पर थोपा था, जिसका हमारे बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान देश सेवा के लिए सदा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड पर तेजी के साथ काम हो रहा है। यहां पर देश विदेश की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के लिए वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सीमा की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि और उनके परिजन को सरकार में नौकरी मिले।
जो जवान देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उन वीर जवानों के परिवारों के लिए शहीद होने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद अपनी ओर से करेगी। परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में उन्हें सेवा का अवसर देगी।
उधर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए। इसी क्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ की ओर से त्रिवेणी नगर के फ्लोरेंस नाइटेंगल इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय करगिल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर रोक के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रखा जारी। कहा, किसी को नहीं कर सकते मजबूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में दिया जाएगा वेटेज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए संशोधित परिणाम किया जारी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, उनके परिजनों को किया सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।